इसके मतलब देखिए, जो सूरत के शुरू में बातें थी अब उसको दोहराया जा रहा है। इस आयत का एक टॉपिक लिख लीजिए, जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी का रास। हर किस्म के मैदान में कामयाबी के लिए जो गोल्डन वर्ड, जो गोल्डन सेइंग्स हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फियतन फसबतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। इकट्ठी पढ़ूंगी इन आयतों को और फिर इंशाल्लाह इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो। इस पे वन लिख लीजिए, साबित कदमी शर्त है। दूसरी चीज़, और अल्लाह को कसरत से याद करो, यानी तुम्हारी जुबान जिक्र से दारो, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, दीन के काम पे आप चाहे इस हॉल में शादी का कोई प्रोग्राम अरेंज करें, आपको इफ्तार पार्टी रखें, आप यहाँ दौरे कुरान के लिए आ रहे हैं, आप यहाँ कल तकमील करें, काम करने वालों की जुबानें जिक्र से तार होनी चाहिए। जब दीन का काम करने वाले या आप इस वक्त सीखने वाले साथ साथ बातें करते जाएं, क्या हो रहा है, किधर है, क्या है, उससे अबतरी फैलती है। तो इसका बेस्ट तरीका जिक्र। इस वक्त भी यहां बैठे हुए ना, आप सुन रहे हैं, जरा सी आपकी तवज्जो भटकने लगे ना, तो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मेरा क्या जुर्म है जो मेरी तवज्जो नहीं आ रही, नींद आने लगे, यॉनिंग आ रही है, अस्तग़फिरुल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, कुछ ना कुछ कहें। आप देखेंगे कि शैतान भाग जाता जिक्र की वजह से। तवक्को है कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। तीसरी चीज, खुशी से अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों को अपनाओ और आपस में झगड़ो नहीं, झगड़े ना करो। ये झगड़ों से तुम्हारी सारी बरकत चली जाएगी, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो। लोग बातें करेंगे, देखो वो झगड़ते हैं, वो देखो दीन का काम करने वाले, वो देखो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले। यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अगली चीज, क्या ना करो, और इन लोगों के से रंग ढंग ना इख्तियार करो जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले, और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बाखिर नहीं है। तो क्या पता चला कि हर किस्म के जिहाद में कामयाबी के लिए अगर आपने मैंने इन चीजों पे अमल कर लिया, आप देखिएगा कि इस कौम को कोई पीछे नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि तू क्या सकवा में मगरिब पे ना कर, खास है तरकीब में कौमे हाशमी। ये मुसलमान एक अजीब ही कुमरगुला है, इसको आप दुनिया के किसी से नहीं करें। वजह क्या है कि उनके अंदर ये सारी सिफात होती थी। सहाबा किराम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जमा होते थे, जब बाद के अरसे में जब अगला अगला दौर आता गया, हुब्बे जाह और हुब्बे माल आई, मुसलमान तफरकों में पड़ गए। ये आज उम्मत क्यों टूटी, इसके पीछे ये सब कुछ मौजूद है। आप देखिए, आज किसी को आप रंग और नस्ल पे मुत्तहिद करें नहीं बोल सकते, आप अरबी और अजमी की तरकीब पे रखिए नहीं। उम्मत को बनाने वाली चीज असल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, कुरान और हदीस है। जितना इस पे लगे रहेंगे फायदा होगा। दूसरी चीज, आप देखिए इसमें साबित कदमी की बात है। जब इरादा कर जो लिया तो फिर पीछे मुड़ के क्यों देखते हो। फसबतू, आप देखिए कि आप यहां से, मिसाल है कि आप किसी भी शहर में जाना चाहते हैं, इरादा कर लिया ना तो निकल जाइए। अब बार बार गाड़ी रोकें, जाऊं कि ना जाऊं, करूं ना करूं, फिर आ जाऊं वापस, आप कभी नहीं पहुंचेंगे। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि जमता कौन है, मुझे इस दीन के काम में जमाव कब आएगा, इसके लिए एक मेयार लिख लीजिए। दुनिया में काबिलियत की बुनियाद पर चुनाव होता है, अल्लाह के रास्ते में जज्बे और शौक की बुनियाद पे चुनाव होता है। आप में कोई खूबी नहीं, मुझे तो वो सहाबी याद आ जाते हैं, इब्ने मखदूम, अल्लाह के नबी मुझे अपने साथ ले जाइए। अरे अभी तुम क्या करोगे वहां, दुश्मन से लड़ेंगे या तुम्हें देखेंगे, कहा कि मैं मुसलमानों का झंडा पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा। अंधा हूं, नाबीना हूं, लड़ नहीं सकता, झंडा तो पकड़ सकता, और ये मैं आपको बताता हूं कि मैं झंडा गिरने नहीं दूंगा, मेरे बाजू कट जाएंगे, मैं झंडा नहीं निकल छोड़ने दूंगा। ये जज्बा और शौक दीन का काम लेता है। आप में से मेरे में कोई काबिल नहीं है, वल्लाही अल्लाह काबिल बनाता है। दूसरी कंपनी सीए आपकी देखती है, आपने क्या पढ़ा, किधर पढ़ा, कितनी डिग्रीज हैं, कितने आपके रैंक्स हैं, फिर जॉब देते हैं। अल्लाह अपने काम के लिए जॉब सिर्फ और सिर्फ उसको देता है जिसमें जज्बा आता है, तड़प है, जिसको अल्लाह का ये दीन इस वक्त सबसे प्यारा लग रहा है। आप और मैं यहां इस वक्त क्यों बैठे हैं, इस वक्त ये काम, ये पढ़ना, ये लिखना, ये सीखना, हमें इस वक्त दुनिया की हर चीज़ से प्यार है, अल्लाह ने हमारे जज्बों की कदर की ले आए। फिर उसके बाद फर्स्ट वुदू, लौटने का तो सोचो भी ना। आप याद रखिए कि जितना ज़्यादा आपको मुझे अपने मकसद की सच्चाई का यकीन होगा, उतना ही ज़्यादा आप और मैं इस चीज़ के ऊपर मौजूद होंगे। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें एक और चीज़ आपको मुझे बहुत ही खूबसूरत तौर पर बताई गई, और वो क्या है कि जो गिरोह आपस में झगड़ता है उसकी हवा उखड़ती है। क्या जुम्मत मुस्लिमा की हवा उखड़ी हुई है? आज गोरे आपके मेरे हाल पे हंसते हैं, इंडिविजुअली ना भी हंसते हो, एक मुसलमान के हाल पे वो जरूर हंसते हैं। क्या सोचकर, ए इनको छोड़ो, ये तो लड़ते हैं, ये तो शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, फुलां मुस्लिम, ये वहाबीज हैं, ये फुलां हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज हम लड़ रहे हैं। तो उम्मत को एक रखिए। आप देखिए जिस घर में बच्चे ही लड़ते रहे ना, तो माँ का टेम्पर बहुत हाई हो जाएगा। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें खैर दे। फिर अगली चीज़ आप देखिए कि बतर से यहाँ रोका गया, दिखावा। बस दफा दीन के कामों में भी दिखावा होता है, और वो क्या, जरा लोगों को दिखाते हैं कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जरा इनको सजा के दिखाते हैं, जरा इनको बना के दिखाते हैं। तो याद रखिए बतर भी दीन को बहुत नुकसान देता है। डिस्प्ले, शो ऑफ कल्चर, बड़े बड़े स्टेज, कुबकुबे लगे हुए, झंडियां, पत्तियां, फूल, आने पे फूल पेश करो, जाने पे ये करो, प्रोटोकॉल, ये दीन को नहीं सूट करता। दीन का काम करने वाले मुनकसिरुल मिजाज, शरीफुल नफ्स, और अपनी जात के लिए कोई बड़ाई तलब करने वाले ना होंगे, आप देखिए उतनी बरकत होगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो खैर करे। बस दफा जब दीन के काम में, मसलन जिस मौलवी से किताब बैठे हैं, क्या ये बदतर है? नहीं, ये आपके लिए नरम कुर्सी, आपकी आराम के लिए बिठाएगी। ये अगर प्रोजेक्टर है, ये किस लिए, कि आपको कुछ दिखाया जाए? ये माइक आपको आवाज दे रहा है। अगर मैं आपसे जरा सा ऊंचा बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ, कि मैं पीछे आखिरी सिस्टर तक को देखूँ। तो ये जो इंतजाम होते हैं ना, सादगी के साथ खूबसूरत तरीके से कंफर्टेबल बनाना और चीज है। लेकिन अब क्या, हम दीवारों पर झंडियां लगा दें, इधर फूल लगा दें, इधर कुमकुमे लटक रहे हैं, आप बताइए ऐसी महफिल में अल्लाह कहाँ याद आएगा? और अल्लाह तला से ये दुआ करें कि अल्लाह तला हमें दुनिया और दीन के सारे बतर से बचा ले। आज हमारा पूरा कल्चर बतर पे है, शादी में बतर, बतर मैं बोल रही हूँ लेकिन पता नहीं आपको समझ आ भी रहा नहीं, दिखावा, शो ऑफ कल्चर, दिखाने के लिए करते हैं। मिठाई के टोकरे लेकर जा रहे हैं, दिखावा है, कितनी मिठाई आई, वो फूल बताशे पता नहीं जो कभी नहीं किसी ने खाए, शादी के मौके पे भी वो थैलियों में जरूर भर दें, क्योंकि जी ये सब करते हैं। पांच मन मिठाई लेकर जा रहे हैं, वो पांच मन मिठाई खानी किसने, आधी दुनिया तो अब शुगर का शिकार है, दिखावे के लिए। कपड़े बड़े बड़े पहनते हैं, दुल्हन को 5 लाख का जोड़ा दिखावे के लिए पहनते हैं। गाड़ी क्यों सजती है, दिखावे के लिए। एक असूल याद रखिए, अपनी जात के लिए जो दिल करता है वो करें। आपके बच्चे की शादी, आप खुश हों, आप अच्छे कपड़े पहने, आप अपनी खुशी के लिए कुछ करें, लेकिन जहां हम दूसरों के लिए करने लगते हैं, वो चीज़ जो है वो हमारे लिए फिर बहुत ज्यादा नुकसान का जरिया बनती है। फिर आप शैतान की एक करतूत का तज़किरा है अगली आयत में। सुराका बिन मालिक एक शख्स था, तो उसकी मक्का वालों के साथ कुछ बात चल रही थी, तो उनको खतरा हुआ कि कहीं जंग में हम गए, सारे ही चले गए, तो पीछे से ये कबीला हमारे बच्चों और औरतों पर हमला ना कर दे। शैतान ने ये बात सुन ली, उसने कहा अच्छा, इसका तो ये मुसलमानों के खिलाफ अब नहीं जाएंगे या थोड़े जाएंगे। कहने लगा नहीं नहीं तुम जाओ। शैतान जो था वो सुराका की शक्ल में आया, आके कहने लगा देखो देखो मैं तुम्हें पूरी तसल्ली देता हूँ, लिख लो तुम जाओ जाओ मुसलमानों के साथ लड़ो, मोहम्मद के साथियों को मारो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लिख देता हूँ कि तुम्हारे पीछे यहाँ खतना नहीं करूंगा, और तुम्हें डर है ना तो चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। मक्का वाले राजी हो गए, कहा चलो जब सरदार हमारे साथ है तो पीछे हमला कैसे होना है। असल में वो शैतान था, मैदान बदर में गया, शुरू में वहां बैठा रहा, ज्यों ही फरिश्ते उतरे, फरिश्तों को देखकर शैतान भागता है, तो लोगों ने देखा कि वो भाग रहा है पानी की तरफ, किसी ने पीछे से पूछा अरे सुराका तुम किधर चल दिए, का इन्नी तरा माला तरौन, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, और वहां से भाग गया। अब इस मंजर को जरा कुरान की आयतों में देखिएगा, जरा ख्याल करो उस वक्त का जबकि शैतान ने इन लोगों के करतूत इनकी निगाहों में खुशनुमा बनाकर दिखा दिए और इनसे कहा आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो तो जंग की बात थी। आज शादियों के मौके पे कुछ लोग कहते हैं कोई हमसा हो तो सामने आए। याद रखिए जहां बतर और दिखावा होगा वहां इस किस्म की बातें शैतान दिल में बहुत सारी डाल देगा और लोगों के जहन में ये सोच डालेगा कि देखो तुमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त, तुमसे अच्छी शादी किसी ने नहीं की, और फिर एक से एक भड़कर गलत से गलत कामों में ले जाता है। अब असल में हुआ क्या, फलम्मा तरातिल फियतानी नकसाला अकिबई ही, मगर जब दोनों गिरोहों का सामना आमना हुआ तो वो उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा मेरा तुम्हारा साथ नहीं है। याद रखिए, शैतान दुनिया में भी ऐन वक्त पे आपका साथ छोड़ता है और क्यामत के दिन भी छोड़ेगा। हम आगे आ रही है सूरत इब्राहिम, उसमें शैतान का एक पूरा मुकालमा पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्यामत के दिन लोगों को मलामत करेगा कि मेरी बात तुम ना मानते, मैंने तुम्हें कहा था, मजबूर तो नहीं किया था। यहाँ भी यही कह रहा है, मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देखते। फरिश्तों की तरफ इशारा है, मुझे अल्लाह से डर लगता है। जरा सोचिए, शैतान का ये जुमला ठीक है कि इन्नी अखाफुल्लाह? जरा से इस पे 3 सेकंड गौर कीजिए, ये झूठ था उसका। इसी तरह कुछ लोग मुंह से बड़ा बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह, बड़ा डर लगता है, फिर वही काम करें, बड़ा डर लगता है अल्लाह से, फिर जाके गुनाह करें। देखिए, आपको डर लग रहा है, पुलिस ने आपको रोक कर आपको पकड़ लेना है कि आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी, तो आप बांधते हैं कि नहीं बांधते? मुंह से कहते रहे भाई बड़ा डर लग रहा है, पुलिस वाला रोक लेगा, तो सीट बेल्ट ना बांधने पे मुझे, यहाँ है कोई इसका क्या खर्चा है बताएगा कोई आप में से? 90 यूरो का है, नॉर्वे में 700 क्रोन है। अब आप देखिए कि अगर आपको ये डर है कि अगर आपने सीट बेल्ट ना बांधी तो पुलिस आपको पकड़ कर 700 क्रोन या आपको 90 यूरो का टिकट देगी, तो बांधते कि नहीं बांधते? कि मुंह से कहते रहते हाय डर लगता है, डर लगता है। तो लिखिए, कुछ लोग सिर्फ ये मुंह से कहते हैं हमें अल्लाह से बड़ा डर लगता है, असल में जरा भी डर नहीं लग रहा होता। डर लगे तो बंदे की शक्ल बदल जाती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं। बाज़ दफ़ा गुनाह की महफिलों में बैठे हुए लोग ये कुछ कह रहे होते हैं, बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है, लेकिन वो कोई डर नहीं होता, वो सिर्फ एक दिखावे का डर है। और ये भी एक रियाकारी की किस्म है कि लोगों के सामने इस किस्म की शक्लें बनाकर बैठना, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जुमले बोलना कि जिससे लोग हाँ ये कितना डरते हैं। आप कहें मुझे बड़ा डर लगता है, लोग कहेंगे नहीं आपको डरने की जरूरत है, आप तो इतनी नेक है। ले अगर आप डर रही हैं तो फिर हमारा तो क्या, बस अंदर से खुश हो जाएंगे कि वाकई मैं तो बहुत नेक हूँ, मुझे तो नहीं डरना चाहिए। तो यहाँ फिर देखिए, अपने जुमलों को कम करें, कम बोलना। हम सीख रहे हैं इस वक्त अपने दौरे कुरान में कि हमने अपने टाइम को मैनेज करना है। तो बिल्कुल हर वो जुमला जो आपको फील भी हो रहा है ना कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, यानी उसी के एंड पे, और अल्लाह ताला बड़ी सख्त सजा देने वाला है। अब यहां से मुख्तलिफ किस्म के लोग जिनके दिलों में कुछ, जुबान पे कुछ, अमल में कुछ था, इस्लाम ऐसी कैटेगरी को मुनाफिक कहता है। आप यहां से लेकर सूरत तौबा के एंड तक इनमें से मुख्तलिफ किस्म के मुनाफिकों का तस्करा पढ़ते रहेंगे, जिससे ये पता चलता है कि निफाक भी कई किस्म का होता है। पहली किस्म, इस यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरद, जबकि मुनाफिक और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग लगा हुआ है कह रहे थे कि इन लोगों को तो इनके दीन ने खब्त में मुब्तला कर दिया, करना कराना कुछ नहीं और कमेंट पास करते हैं। लिखिए, मुनाफिक की ये आदत होती है, खुद काम दीन का नहीं करता पर जो करते हैं उनके ऊपर जुमले कसता है। देखो ना इनको क्या हो गया, क्या है जी, खपती हो गए, सुबह इधर शाम होता रात उधर, क्यों हमारे बच्चे नहीं है, हमारे घर नहीं है, क्या हम आप अपने घर को ना देखें? यानी ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग। हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा जबरदस्त और दाना है। अल्लाह का जवाब भी सुन लिया आपने मैंने कि तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, तुम आराम से बैठो, तुम घर में बैठ के सुकून से अपने काम करो, तुम किसी काम करने वाले के ऊपर क्यों इसी तरह के जुमले कसते हो? इसी तरह आप देखिए ना, समझी में कई दफा लोग मौलवी के नाम के साथ दसियों लतीफे बनाते हैं, मौलवी की दौड़ मस्जिद तक, ये मुल्ला को बड़ी मसला, फिर अजान दे दी, ये खपती। यानी इस तरह आप देखिए, जिसको आप अंदर से हल्का समझते हैं ना, आप उस पर 2-4 जुमले बोल ही देंगे। आपके घर में काम करती है लड़की है, मासी है, वो जरा है दीवानी सी, उठते बैठते के, चल चल्ली, चल उठ, चल दीवानी, चल मजनू, कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप ये जुमले बोले जरा अपनी बहू को, फिर वो आपको दीवानी बन के दिखाती है। तो जिसकी दिल में कदर नहीं होती ना, हम उसको बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और याद रखिए, आज के दौर में तो शैतान ने लोगों को सबसे बुरे, सबसे मशकूक और सबसे खराब लोग कौन पेश किए हुए हैं? जो दीन का काम करते हैं, किसी लेवल पे भी करते हैं, मैं नहीं कहती पढ़ते पढ़ाते हैं, कहते हैं बेवकूफ, ये मौलवी, ये मुल्ला, ये फलाने, ये फलाने, ये दाढ़ी वाले, ये देखो मुर्गियां खाते, ये देखो ये करते, ये हलवा खाते हैं, ये हलवा इतना बदनाम क्यों है मौलवी के नाम के साथ? इसलिए कि ये नेगेटिविटी तो ये लिखी अपने लिए, अगर ये आदत मेरी है तो इसको निकाल दो। किसी मसलक का दीनदार है, किसी गिरोह का, किसी दौर में दीन का कोई काम कर रहा है, मुझे आपको हक नहीं पहुंचता कि उसके ऊपर कोई जुमला कसे। आपको क्या पता कि अल्लाह की नजर में उसका क्या मुकाम है, और आप एक जुमला बोलकर अपनी आखिरत खराब करते हैं। फिर उसके बाद यकीनन अल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त और दाना है, काश तुम उस हालत को देख सकते, जबकि फरिश्ते मकतूल काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे, वो इनके चेहरों और इनके कूलों पर जरबे लगा रहे थे और कहते जा रहे थे, लो अब जलने की सजा भुगतो। ये वो जजा है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेश की मुहैया कर रखा था, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये मामला उनके साथ इसी तरह पेश आया जिस तरह आले फिरौन और इनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार के इसको हाईलाइट करें। अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार करना ये छोटा जुर्म नहीं है, और अल्लाह ने इनको इनके गुनाहों पर पकड़ लिया। अल्लाह कुव्वत रखता और सख्त सजा देने वाला है। यहाँ आपको अजाब कब्र की झलकी मिली है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि फिरौन को हर रोज सुबह शाम, कुरान की आयत भी आगे हम पढ़ेंगे, सुबह शाम इनको आग का अजाब दिखाया जाता है। इसी तरह कारून के बारे में आता है, वो हर रोज एक इंसान के कद के बराबर जमीन में धंस रहा है। और इसी तरह गजवा बदर में जो कुफार मारे गए वो बदर के कुएं में फेंक दिए गए। अल्लाह के नबी ने जाकर उनसे इस तरह की बातचीत की, इससे क्या पता चलता है कि अजाब कब्र बरहक है। कुछ लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, मौत का अजाब, कब्र का अजाब और मैयत के साथ जो कुछ मामला होता है, कुरान की बहुत सारी आयतों में हमें इसके रेफरेंस मिलते हैं। अब ये सब का जुर्म क्या था, इन सब ने किया क्या था, किस वजह से ये सब कुछ हुआ, अल्लाह सुबहान तआला इसका जिक्र करते हुए फरमाते हैं, कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम। उन्होंने अपने रब की आयात को छुटलाया, तब हमने इनके गुनाहों की पादाश में इनको हलाक किया और आले फिरौन को गर्क कर दिया। ये सब जालिम लोग थे। आप कहेंगे एकदम यहाँ आले फिरौन का जिक्र क्यों आया, क्योंकि वो भी पानी में डुबोकर मारे गए और ये लोग भी पानी के अंदर फेंक दिए गए। यकीनन अल्लाह के नज़दीक ज़मीन पर चलने वाली मखलूक में सबसे बदतर वो लोग हैं जिन्होंने हक को मानने से इनकार कर दिया, फिर किसी तरह वो इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ख़ुसूसन इनमें से वो लोग जिनके साथ आपने मुआहदा किया, फिर वो हर मौके पर इसको तोड़ते हैं और ज़रा खुदा का खौफ नहीं करते। इसको हाईलाइट करें, छोटी सी अमल की बात है। कमिटमेंट्स करके ना निभाना, वादे करके पूरे न करना, वादों को वफा न करना, इस बात की दलील है कि इंसान बेखौफ है, निडर है। अल्लाह हमें अपना खौफ अता फरमा दे। बस अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं तो इनकी ऐसी खबर लो कि इसके बाद दूसरे जो लोग ऐसी रविश इख्तियार करने वाले हों इनके हवास बाख्ता हो जाएं। तवक्को है कि बदायतों के इस संजाम से वो सबक लेंगे, और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से खयानत का अंदेशा हो तो इसके माहदे को ऐलानिया इसके आगे फेंक दो। यकीनन अल्लाह ताला खाइनों को पसंद नहीं करता। मुनकरीन हक इस गलत फहमी में ना रहें कि वो बाजी ले गए, यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते। खयानत क्या होती है? एक होती है माल की खयानत, किसी ने आपके पास 100 डॉलर रखे, आपने उसमें से 10 निकाल लिए, किसी ने जेवर रखा आपने ले लिया, ये खयानत तो बड़ी आम है। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए जिस खयानत की बात है, वादों की खयानत, आप देखिए जिम्मेदारियां कबूल करना, और ऐसी जिम्मेदारी कबूल कर लेना जो करने का इरादा ही नहीं है, या करके उसको लेयर लेना, 4 दिन बड़े शौक से करना, उसके बाद ठंडे हो जाना, ये खयानत है। मैं अपने ऊपर लेकर बताती हूँ, अगर मैंने ये नीयत की कि मैं आपको यहाँ कुरान पाक सिखाऊंगी और मैं 4 दिन के बाद कहूँ अभी सो के छोड़े, कभी लेट आऊँ, कभी जल्दी निकल जाऊँ, कभी आऊँ कभी नहीं, कभी कहूँ इस वक्त जाके घर में मैं नफिल ना पढ़ लूँ, चले आज जुमे की नमाज है जुमा ना पढ़ाऊँ, क्या जुमा पढ़ने का मुझे अजर नहीं होगा? बहुत अजर होगा, लेकिन मेरे इस कमिटमेंट से ये खयानत होगी। आप सब और मैं इस वक्त एक नियत करके यहाँ बैठे हैं और इसको पूरा करना हमारे लिए अमानत है। आप सब यहाँ आके बैठे हैं, क्या जरा मैसेज ना चेक कर लूँ, अच्छा जरा घर वालों को एक पैगाम ना दे दूँ, तो ये सब कुछ खयानत में आता है। सारी बात का हक अल्लाह को उसका ड्यू हक दो। जब तक हम अल्लाह के हक को पूरा पूरा अदा नहीं करते, याद रखिए कि फिर अल्लाह ताला हमसे राजी भी नहीं होते। फिर इसके बाद कुछ तैयारियां करने का तذکرہ है, फरमाया और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बंद रहने वाले घोड़े इनके मुकाबले में मुहैया रखो, ताकि इसके जरिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और दूसरे आदा को खौफ सदा कर दो, जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। क्या पता चला? तैयारी करके रखो। इस्लाम आपको मुझे ये नहीं सिखाता कि आप सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल की बात करें और उसके बाद आप सारा कुछ छोड़ दें और आप कह दें जी अल्लाह खुद ही अपने काम करेगा। नहीं, अगर दूसरे असलहा रखते हैं तो मुसलमान भी रखेंगे, अगर वो हथियार चलाते हैं आपको भी रखने चाहिए। और इस्लाम में याद रखें कि हथियार चलाने से ज्यादा दिखाने की रغبत है, असलहे की नुमाइश असलहे के इस्तेमाल से रोक देती है। कभी आपने परेड देखी हो, कभी 23 मार्च को या 14 अगस्त को आपने कभी पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की चीज़ देखी हो तो दिल पे एक रोब तारी होता है। यहाँ असल में तैयारी की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो मुसलमान होने का ये नहीं मतलब कि अब सारे असबाब को पीछे कर दो और तुम अल्लाह के नाम पर मैदान जंग में बगैर तैयारी के चले जाओ। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगली चीज क्या है, खर्च करने की बात हो रही है और वो क्या फरमा दिया, वमा तुन्फिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ्फा इलैकुम वअन्तुम ला तुज़लमून। और अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हारी ही तरफ पलटाया जाएगा। कैसे? आप देखिए, जब मुसलमान अल्लाह के दीन पे खर्च करते हैं तो किसको खैर मिलती है? मसलन आप देखिए, दीन पे खर्च के मुख्तलिफ सूरतें, गरीबों पे खर्च करते हैं तो आपके मुल्क में खुशहाली आएगी, बैगर्स नहीं होंगे, फकीर नहीं होंगे, आपको आते जाते वो सताएंगे नहीं। आप इल्म पे खर्च करते हैं, आपकी अवाम इल्म हासिल करेगी, आप पढ़े लिखे लोग होंगे, आप दुनिया में तरक्की करेंगे, आपको खैर मिलेगी। आप देखिए कि अगर दुश्मन पे लगाते हैं या दुश्मन के मुकाबले पे लगाते हैं, आपकी सिक्योरिटी अच्छी होगी। आप दीन के इल्म पे खर्च करते हैं, किसको खैर पलटती है? आप मुझे बताइए, आज मैं और आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, किसी ने तो इस कुर्सी का पे किया है ना, किसी ने तो इस हाल के लिए कुछ दिया है, किसको खैर जा रही है? देने वाले को कि लेने वाले को? हम यहाँ इन कुर्सियों पे बैठ के उनको अजर दे रहे हैं, हम उनके लिए खैर का जरिया बनाते हैं। तो याद रखिए, अल्लाह कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता, कभी दिल ना घुटाएं, कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पे अपने दिल पे बोझ ना रखें। आप ये कहें कि अल्लाह, हम तेरे रास्ते में इस खुशी से खर्च कर रहे हैं कि तू इसको वापस हम पर पलटाए। आज आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत पे दीनी स्कूलों में उनको भेजते हैं, खर्च करते हैं, कल सारी खैर आपको मिल जाएगी। हमने अपने बच्चों को कितनी आइसक्रीम खिलाई, हमने अपने बच्चों को कितने कीमती बैग्स दिलाए, कपड़े दिलाए, कोई नहीं कल पूछेगा। पर अगर आज आपने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए दीन पे लगाया, फायदा होगा। और अफसोस की बात है, आज उम्मत मुस्लिमा का जवाल उसकी एक बहुत बड़ी वजह, हर चीज पे खुशी से खर्च करते हैं, नहीं करते तो दीन पे नहीं करते। कभी जाके मैकडोनल्ड से बर्गर में 2 यूरो कम नहीं करवाएंगे। आप जाके देखिए मस्जिदों में, अगर शायद 20-20 यूरो भी लेते होंगे, कहीं उधर भी जाके कहेंगे, मौलवी साहब मेरे तो 2 बच्चे आते हैं, मेरे तो 3 बच्चे हैं। भाई खाना थोड़ा खाते हैं, 3 बच्चे हैं तो 2 के कपड़े पहन लेते हैं, आप 3ों के कपड़े लेते हैं। तो याद रखिए, ये एक उम्मत के जवाल की अलामत है। सबसे कीमती जगह पे सबसे ज्यादा सोच के खर्च करें। फिर आए एक नबी, अगर दुश्मन सुलह सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से तुम्हारी ताईद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम रोए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़ दिए। यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। ऐ नबी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरोकार अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह ही काफी है। हाईलाइट कीजिए, इसमें अल्लाह की मोहब्बतों की बांट की बात हो रही है। सहाबे कराम इस्लाम से पहले क्या थे? मक्का वालों में भी मुख्तलिफ कबाइल थे, लड़ते भिड़ते। कभी आपने मौलाना हाली की वो पोएम सुनी होंगी कि कभी एक घोड़े आगे बढ़ाने पे झगड़ा और कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा। इतनी लड़ाका ये कौम थी, रिवायात में आता है कि एक के खेत में से, दरख्त से एक चिड़िया उड़ती और दूसरे के खेत के दरख्त पे जाके बैठ जाती तो लड़ना शुरू हो जाता है कि तो मेरी चिड़िया तुम्हारे पास क्यों चली गई है। अल्लाह के नबी आए, आपने युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम, और इसी तरह से वल हिक्मा, वो सारा मनहज इस्तेमाल किया कि जिनकी अंदर किताब से जोड़ा, उनकी तालीम दी, उनको तरबियत दी, उनके दिल एक हो गए। कि जंगे यरमूक में सिर्फ एक पानी का प्याला, कितने जख्मियों में घूमता रहा, पीने लगता अगले जख्मी की आवाज आ जाती, कहता नहीं मुझे नहीं दो उसको दे दो, उसको देने जाता तीसरे की आवाज आती, सारा प्याला घूमते हुए जब आखिरी के पास गया उसकी जान चली गई, कहा अच्छा जल्दी उनको दे, उसकी गिर सब एक एक करके शहीद हो गए, प्याला फिर पानी का रखा। ये उल्फत कहाँ से आती है? थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। याद रखिए कि दीन के काम में जो बोंड, जो एल्फी या सल्यूशन है, वो उल्फत है। और उल्फत किसको कहते हैं? मोहब्बत। आप कितने आराम से किसी को एक जुमला लिख देते हैं, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अरबी में कहते हैं हिब्बू की फिल्ला, लेकिन वो सिर्फ नाम है। अल्लाह सुबहान तआला का नाम अल वदूद है। जब आप उससे मोहब्बत करते हैं ना, हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, आप लोगों ने कई दफा पढ़ी होगी कि अल्लाह ताला को एक बंदे से मोहब्बत होती है, उसके किसी अच्छे वसफ से ही होती होगी ना। तो अल्लाह जिब्राइल से कहते हैं कि तुम भी इससे मोहब्बत करो, फिर जिब्राइल आसमानों में और आसमानों वाले फरिश्ते जमीन के फरिश्तों से, और जमीन के फरिश्ते इंसानी दिलों में आकर एक ख्याल डालते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। इससे अल्लाह करता है, रसूल करता है, फरिश्ते करते हैं, तुम भी करो। फरमाया उसके लिए पूरी दुनिया में मोहब्बत बांट दी जाती है। मोहब्बत का असल सोर्स क्या है? कि आप अल्लाह के साथ संजीदा हो जाए। कुछ मोहब्बतें दुनिया में जाती मुफादात पे होती हैं। आपको किसी से फायदा हुआ मोहब्बत की, चंद दिन के वह फायदा नहीं हुआ, कहते तू कौन मैं कौन। याद करिए कितनी दोस्तें बनी कितनी छुट्टी, कितने कारोबारी ताल्लुकात बने कितने टूटे। इसके बरक्स आप देखिए कि दीन की मोहब्बत, आप देखिए सहाबे कराम। एक और भी फर्क है कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है ना, वो टाइम बाउंड नहीं होती। आप उसी दौर में हैं तो मोहब्बत है, दूर हो गए या कुछ साल गुजर गए तो मोहब्बत खत्म हो गई। इस बेस पे भी नहीं होती कि आप सामने आमने हैं कि नहीं है। आप दूर चले जाते मोहब्बत कायम है। मसलन सहाबा से आपको मुझे मोहब्बत है, अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा, क्यों प्यार से नाम लेते हैं। कितनी सदियां गुजर गई उनको दुनिया से गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की। तो लिहाजा एक जुमला लिखिए, उल्फत का मरकज अल्लाह की मोहब्बत, उल्फत की कातिल जुबान, ताने गीबत तंज ऐसे ही बेतकल्फी में ताने देने लग जाते हैं, मोहब्बत खत्म हो जाएगी। नबी की मौजूदगी में सहाबा के दिल जुड़े हुए थे। आपके बाद बाद वाक्यात ऐसे हुए कि जिसके ऊपर जंगें तक हुई, लेकिन आपको मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी। बस ये याद रखिए कि मोहब्बत अल्लाह के हाथ में होती है। दुआ करें अल्लाह मेरे दिल में उल्फत पैदा कर दे। आप अल्लाह ताला को अपनी आला प्रायोरिटी बना लें, मकसद हयात बना लें। आप देखिए इसकी वजह से खुद बहुत लोग आपसे भी जुड़ेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। आप अकेले चलेंगे एक सफर के ऊपर, अल्लाह की मोहब्बत दूसरों के दिलों में आपकी और उस काम की मोहब्बत डालेंगे, और लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। आप देखिए इखलास की ये बुनियाद है कि अल्लाह उसमें बरकत देता है। अल्लाह तड़प को कबूल करता है, अल्लाह कोशिशों को कबूल करता है, लेकिन नाम हो कबीले का, मोहब्बत हो फिरके की, प्रमोट करना हो किसी शख्सियत को, तो याद रखिए वो जो मोहब्बतें मिलती हैं वो सिर्फ बाजारी मोहब्बतें होती हैं। असल मोहब्बत वो है कि जो एक अंदर से आए। आज आप देखिए क्या उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बंगाली मुस्लिम, ये सोमाली मुस्लिम, और एक लफ्ज जिसको मैं बोलूं तो मुझे लगता है मेरी जुबान कड़वी हो गई, लेकिन मेरे कान अक्सर सुनते हैं, कालों की मस्जिद। क्यों आप बड़े गोरे हैं, ये काले लफ्ज क्या है, ये कालियां फिर रही हैं, जरा परस संभाल के रखना। नाउजु बिल्लाहि मिन जालिक, ये मोहब्बत नहीं है। सबके दिल एक हो, उम्मते मुस्लिमा एक जस्ते वाहद की तरह अपने अंदर ईमान लाई, ईमान की वजह से आपके दिलों में मोहब्बत होगी। अल्लाह सुबहान तआला यही बात आपको मुझे यहां बयान कर रहे हैं कि दिल नहीं जुड़ते। आप कहते किसी को तोहफा दो फिर वो आपसे बड़ी मोहब्बत करेगा, तो अगर तोहफा पसंद ना आया तो जो मोहब्बत थोड़ी थी वो भी चली जाएगी। लोग तो वो कैसे पोस्टमार्टम करते हैं जैसे डॉक्टर लाशों का करते हैं, भाई क्या जरूरत है आपको किसी को सिर्फ पैसे दे के मोहब्बत करानी है। लोग कहते हैं वो खाना खिला देना फिर ये बड़ी खुश हो जाएंगी, तो खाना आपका नमक तेज हो गया, मर्च तेज होगी, मोहब्बत की कातिल। कभी इन बेकार चीजों से मोहब्बत नहीं आती। आप अल्लाह से मोहब्बत करें, संजीदा हो जाए। दूसरी चीज, आप दूसरों से सिंसियर हो जाए, आप अपनी सास से सीरियस हो जाए, संजीद प्यार करें उनसे। वन साइडेड आप उनके साथ प्यार करें, अल्लाह उनके दिल में डालेगा। उनका जिक्र खैर करें, उनकी तारीफें करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। और याद रखें, काम अगर मेरा आपका नबियों वाला है, अखलाक भी नबियों वाला होना चाहिए। तस्किए की जरूरत है, साथी दीन का काम करते हुए जब तक वो हम प्याला हम निवाला नहीं होते, अल्लाह के फरिश्ते तो छोड़ दीजिए, मुझे तो लगता है कि शैतान आ जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, अखलाक ऐसे होते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह जैसे सहाबा के दिलों में मोहब्बत डाली, हमारे दिलों में भी ऐसे डाल दे। अल्लाह दिलों को देख कर डालता है, कोई बहुत खूबियां नहीं थी उनके अंदर। आप देखिए सहाबा की इबादात का कोई कमी जिक्र है कुरान हदीस में, उनकी तस्बीहात उनकी नफिल नमाजें हैं कुछ लेकिन बहुत कम। सबसे ज्यादा जो चीज कि उनके दिल एक थे। क्या मजाल है क्योंकि अबू बकर के सामने उमर की बात कर सके, और उमर के सामने अली की बुराई करे, और अली के सामने तलहा की, और अमीर मुआविया और हजरत अली जिनके बीच में जंग भी हुई, सियासी जंग थी, याद रखिए वो ईमानी जंग नहीं थी। इसका उस वक्त जरूरत नहीं है बात करने की। बट एक काफिर बादशाह ने उस वक्त में पैगाम दिया हजरत मुआविया को, कहा सोना तेरी आजकल बड़ी ठनी हुई है, कहता है तो जरा फौज भेजू अली के खिलाफ लड़ने के लिए। अमीर मुआविया को गुस्सा आया, उसको खत लिखा, कहा खबरदार तू हमारे मामले में बोला, अगर तूने अली के खिलाफ फौज खुशी की सबसे पहला मैं हूंगा जो तेरा मुकाबला करूंगा। ये मेरा जाती मामला, आप क्यों बोलते हैं। आज अगर मुसलमान इस जुर्रत के साथ बोले किसी को हमसे मोहब्बत और हमदर्दी दिखाने की तौफीक नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए खैर करे। अब चंद लफ्ज लिख लीजिए, हर साल लिखाती हूँ क्योंकि आज उम्मत मुस्लिमा को मोहब्बतों की जरूरत है। देखिए जिस बच्चे को बचपन में प्यार नहीं मिलता ना, वो बड़ा होकर चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रिमिनल बन जाते हैं। आज लगता है अमूमी तौर पे इस उम्मत मुस्लिमा के स्पीकर्स को मोहब्बत फैलाने की बातें करनी चाहिए। क्या चीजें मोहब्बत की कातिल हैं, किस चीज की वजह से मोहब्बत नहीं होती। पहली बात जुबान, इसका कम इस्तेमाल कीजिए, बोलना ही नहीं है। जब जिक्र में तार है तो आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, खुद को मसरूफ कर लें। फारिग लोग बहुत झगड़ते हैं, भाई झगड़ने का वक्त ही नहीं, जवाब देने का वक्त ही नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए, कभी किसी को प्यार में या गुस्से में बेतकल्फी में तंज ना करें, चाहे बेटी है चाहे बहू है, चाहे आपकी दीन का काम करने लिए साथी है, या यहाँ साथ बैठी हुई सिस्टर है जो आपके साथ कुरान पढ़ने आई। आ गई आप, बड़ा मौका मिल गया, अच्छा जी कल कहाँ थी आप। ये टोन खत्म कर दीजिए, सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है इन चीजों से। फिर आप देखिए, छोटे छोटे इश्यूज को, नॉन इश्यूज को इश्यू बना देना, इससे खत्म होता है। कैसे मोहब्बत आम होगी? सलाम करें, किसी को देखें अस्सलाम वालेकुम, आप देखिए फायदा होगा। हाँ, अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कभी छोटा सा, कोई इतना हल्का सा तोहफा दे दीजिए कि जिससे अगले का दिल खुश हो जाए, क्योंकि तहादु तहाबु। फिर इसी तरह खंदा पेशानी से, स्माइल से मुस्कुरा के देख लें किसी को, प्यार से कोई खाना बना के कोई ऐसी चीज दे दें, अच्छा मशवरा दें, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और खिदमत कीजिए, आप कहते हैं बेटियां ससुराल में जाएं, सोने में तोल के भेजे ताकि सास इसके हाथ पांव दबाएगी, कभी नहीं दबाएगी। बेटी को अगर आपने मोहब्बत दिलवानी है ससुराल से, उसको खिदमत सिखाइए, उसके चेहरे पे स्माइल हो, वो लोगों को देखकर ये ना गिल्ट दे दे कि क्या मुसीबत है मेरी जान पे पड़ी हुई है। एक और चीज जिससे मोहब्बत बढ़ती है, तवक्को ना रखें। आप किसी से एक आने की तवक्को ना रखें। आप देखें, जब तवक्कात बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, अगला बंदा जो मर्जी कर ले आप उसे खुश ही नहीं होते। और फिर इसके बाद ये है, नरमी लाए। जिस बंदे के मिजाज में नरमी है, उसको अल्लाह की तरफ से भी और बंदों से भी मोहब्बत मिलती है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये एटीट्यूड अख्तियार कीजिए। मिट्टी पाओ, हो गया सो हो गया। कभी लोगों को, जिसको पंजाबी में कहते हैं बात को रिड़को नहीं, कुछ लोग जाने ही नहीं देते बात को, हो गई भाई खत्म। सुबह बात हुई 5 मिनट में खुश, हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ 2 मिनट में स्माइल से मना लीजिए, प्यार से बात कर लीजिए, बच्चे को डांट दिया अगले ही मिनट जाएंगे गले लगा ले, माथा चूम ले, बात खत्म हो गई। ये जो हम ले के साथ चल पड़ते हैं ना, ये चीजें पीछे पड़ जाती हैं। आप कहेंगे कि जंगी बातों के अंदर ये इतनी बातें क्यों आ गई? यकीन करें, अगर आप दीन का काम करना चाहते हैं, आप अपने वजूद को सरापे मोहब्बत बना लें, प्यार करें, आप देखिए कि कैसी कशिश आ जाएगी आप में। आपके घर वाले आपको रोकेंगे नहीं, आप अपने घर वालों से प्यार करें। जो बेचारे दीन पे भी नहीं आते या जिनको भी सीखना नहीं आता, प्यार कीजिए, आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे बहुत बात आएगी। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें दूसरों की मोहब्बत दे दे, हम बेलौस मोहब्बत करने वाले बने।